हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज के इस ग्रुप में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हमने सुना कि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो हम दुखी रहेंगे, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति दुखी रहता है। इसलिए हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और ज्ञान प्राप्त करने के कौन कौन से प्रमाण बताए मैंने आपको? तीन प्रमाण बताए। पहला है डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण, और तीसरा है शब्द प्रमाण। और इन प्रमाणों में से परफेक्ट प्रमाण कौन सा है? शब्द प्रमाण। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस प्रकार वेदों का उदय हुआ और किस प्रकार क्षय हो गया, और कैसे श्रीमद् भगवद गीता का अवतीर्ण हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने समस्त वेदों के सार के रूप में श्रीमद् भगवद गीता हमें प्राप्त करा दी। और गीता प्राप्त कर लेना ही काफी नहीं है, एक शुद्ध गुरु की आवश्यकता है श्रीमद् भगवद गीता को समझने के लिए। इसके विषय में हमने पढ़ा, और गुरु क्यों करना चाहिए उसके पांच कारण बताए मैंने आपको। पहला ये कि गुरु करने से परम सत्य को जानना बहुत इजी हो जाता है। और उसके बाद दूसरा ये बताया कि गुरु करने से ही हम दिव्य ज्ञान को समझ सकते हैं। उसके बाद जब भगवान भी संसार में आते हैं तो गुरु बनाते हैं, और उसके बाद ये कि जब तक गुरु नहीं बनाएंगे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और एक दूसरा कारण ये कि जब गुरु होगा तो वो ही हमें बताएगा कि इस शास्त्र का कितना आपको किस तरह से प्रयोग में प्रैक्टिकल कैसे करना है। शास्त्र रीड तो कोई भी कर लेता है, लेकिन गुरु ही हमें ये बता सकता है कि इसको किस तरह से प्रैक्टिकल अपने जीवन में लाना है। ये पांच कारण तो गुरु क्यों बनाना चाहिए उसके मैंने बताए। और उसके बाद मैंने आपको पांच योग्यताएं बताई कि गुरु के अंदर कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु की पहली योग्यता कि वो अपने आप को गुरु ना समझ, हरे कृष्णा, गुरु की पहली योग्यता कि वो अपने आप को भगवान ना समझे बल्कि भगवान का दास माने। दूसरी योग्यता कि गुरु भगवान श्री कृष्ण का भक्त होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्त्यामाम अभिजानन्ति, हमें भगवान को समझने के लिए गुरु चाहिए ना। तो गुरु भक्त होगा तभी भगवान को समझेगा, क्योंकि भगवान बोलता है मुझे तो केवल भगवान को खाली भक्ति समझ सकते हैं। इसे गुरु भगवान का भक्त होना चाहिए। उसके बाद तीसरी योग्यता, गुरु जो उपदेश देते हैं उस उपदेश का पालन स्वयं गुरु के जीवन में भी होना चाहिए, अर्थात गुरु आचार्य होना चाहिए। उनके आचरण में भी वो सारी बातें होनी चाहिए जो उनके बातों में होती हैं। उसके अतिरिक्त गुरु को अपनी इंद्रियों पर वश होना चाहिए, अपनी सारी इंद्रियों मन कर क्रोध जुबान पेट और जनन इंद्रिय के वेग को उसने कंट्रोल किया हो। और पांचवी गुरु की क्वालिटी ये है कि गुरु जिसे हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो किसी संप्रदाय के अंतर्गत गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए। ये सब मैंने आपको बता दिया, समझ में आया है? तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, मुझे बहुत सारे नए मेंबर्स ने बताया भी कि इस तरह से समझ में आया है। और यदि फिर भी अगर इसमें से कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप पूछ सकते हो। अब आज जो है, क्योंकि अब तक तो हम केवल ये समझ रहे थे कि भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए, इसको पढ़ने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए और इसमें क्या क्या है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता को वास्तव में इसके ऊपर चर्चा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में जो जो लिखा हुआ, यानी आज हम गीता को खोलने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि गीता में टोटल पांच विषयों पर बात की गई है। अब देखो गीता क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमें इससे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि ये वेदों का सार है। और जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक हम दुखी रहेंगे। गीता प्राप्त पढ़ने की पहली मेन वजह यह है कि हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। हम क्या हैं, भगवान क्या है, हम दुखी क्यों हैं, संसार क्या है, ये सब कुछ गीता में हर प्रश्न का उत्तर है। और गीता में भगवान ने मुख्य पांच टॉपिक्स के ऊपर बात की है। पहला है जीव, उसके बाद ईश्वर, उसके बाद प्रकृति, उसके बाद काल और फिर कर्म। पहला है जीव। आज हम जीव के विषय में चर्चा करेंगे, अगर समय हुआ तो फिर भगवान के विषय में भी करेंगे, वरना फिर भगवान के बारे में या ईश्वर जो सेकंड है उसके बारे में कल बात करेंगे। जीव पहले दिन मतलब एक प्रश्न उठा था कि हम कौन हैं। पहला तो ये प्रश्न है ना कि हम कौन हैं। अब देखने में तो हम, अगर देखा जाए तो हम अपने अपने सारे नाम लेकर बताए। कोई बोले आप कौन हो, मैं अभी आपसे पूछती हूँ, मुझे आप बोलते हो ना दीदी मुझे एड करो, मैं बोलूंगी आप कौन, तो आप सिर्फ अपना नाम बताओगे। क्या मैं सनम हूँ, मैं लयका हूँ, मैं ये हूँ, मैं भारती हूँ, इस तरह बताओगे ना। लेकिन ये तो हम कह रहे हैं ना, श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि हम ये शरीर नहीं है, ये नाम तो हमारे शरीर के होते हैं, लेकिन भगवद गीता बोलती है वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर सोल। हम ये शरीर नहीं है, हम क्या है, हम आत्मा है। तो इस अब ये कैसे कह दें कि हम आत्मा है, हमें बहुत सारे लोग होते हैं संसार में जो बोल सकते हैं कि भाई हमें इस बात पर विश्वास नहीं है कि हम आत्मा है। वास्तव में भक्तों, ये एकमात्र एक ऐसी हकीकत है जिसे हम सब जानते हैं। टोटल जितने भी लोग हैं ना, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक, इस बात को जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम इस बात को जानते हुए भी इस बात को मानना नहीं चाहते हैं, मानते नहीं हैं इस बात को। देखो पहला परिणाम देखो, हमारे घर में अगर भगवान ना करे किसी के घर में डेथ हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो वो हम चाहे किसी का दादा हो, नानी हो, दादी हो, जो भी हो, उसमें से निकला क्या है, वो पूरा का पूरा तो वो शरीर तो उसका पड़ा हुआ है, जिसको आप दादा कहते थे, जिसकी गोद में बैठते थे, जिसके साथ आप बैठते थे, इसको जो आपको खिलाता था, वो तो वहीं पड़ा हुआ होता है। निकला क्या है, उसके अंदर से आत्मा निकली। लेकिन हम क्या बोलते हैं, हमारे दादाजी चले गए। हमारे दादाजी कहाँ चले गए, अगर वो शरीर थे वो तो वहीं पर है। इसका मतलब है जिसको मैं दादा दादा कहता था वो ये शरीर नहीं था, वो कोई और था। ये सिर्फ हम तब यकीन करते जब वो उसमें से आत्मा निकल जाती, जब उसके अंदर आत्मा होती है तब हम शरीर को ही दादा मान रहे होते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी मतलब ऐसी है कि ये कितनी बड़ी बेवकूफी है कि देखो कितनी खूबसूरत कोई लड़की हो, हीरोइन हो, महीने में बहुत सारे पैसे कमाती हो, उसको उसके शरीर की वैल्यू है, सिर्फ शरीर की वैल्यू है कि क्या दिखती है, आइटम है, ये है वो, सिर्फ उसके शरीर की बात हो रही है। लेकिन वो अगर ऐसा हो कि वो घर में बैठी हुई है, ड्रेसिंग रूम पे तैयार हो रही है और इतनी खूबसूरत दुल्हन की तरह तैयार हो गई, यमराज आए, उसके प्राण निकाल दिए, तो उसको क्या बोलेंगे, ये बेचारी चली गई। वो उसका शरीर जिससे हम बात कर मतलब जिसकी हम तारीफ कर रहे थे, जिसके लुक के बारे में, वो अक्सर बोलते हैं ना कि अच्छी सूरत भी कितनी बुरी चीज होती है, हर कोई डालता है बुरी नजर। ये नजर जाती है बुरी किसके ऊपर, शरीर के ऊपर। लेकिन वही शरीर में से यदि आत्मा निकल जाए तो उस शरीर को दफनाया जाता है, जलाया जाता है या चील कौओं को खिला दिया जाता है। कुछ कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जिसमें बोलते हैं चलो ये मांस है, अब चील कौओं को जाके खिला देते हैं। तो ये शरीर हम नहीं है, हम आत्मा है, हम इसको जानते हैं लेकिन इसको मानते नहीं है। बहुत सारे प्रमाण शास्त्रों में कहे गए हैं, कुछ कॉमन सेंस है, हम बुद्धि के द्वारा समझ सकते हैं कि ये जो है वो आत्मा है, हम लोग शरीर नहीं है। और दूसरा इसके अतिरिक्त इंट्रोडक्टिव अंडरस्टैंडिंग के बारे में हम बोल सकते हैं कि देखो ये चीज मेरी है, ये शरीर मेरा है, ये हाथ मेरे हैं, अर्थात मैं तो कोई और चीज हूँ ना, जो ये शरीर है अगर मेरा है तो मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसके अतिरिक्त देखो कॉन्शियसनेस के बारे थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। कैसे, जैसे हम लोग के अंदर जब तक आत्मा होती है तो हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। हमारे गोद में जैसे हम जीवित हैं, मेरे गोद में अगर 20 किलो का कोई सामान रख दिया जाए या कोई बंदा बैठ जाए, मेरी बेटी बैठ जाए या बच्चा, तो फिर मैं बोलूंगी अब मैं थक गई हूँ, अब आप उठ जाओ यहाँ से, यानी कि मेरे अंदर आत्मा है। लेकिन वही शरीर आपके आपका हो और अगर उसमें आत्मा नहीं होगी तो उसके उसके ऊपर 20 क्या 100 किलो रख दो तो कभी बोलेगी नहीं कि मैं थक गई हूँ, यानी कि वो आप वास्तव में आत्मा हो। ये शरीर तो पड़ा हुआ होता है लेकिन बोलते हैं कि डेथ, अब चला गया उसकी बॉडी, वो बॉडी पड़ी हुई होगी लेकिन फिर भी उसको कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है वास्तव में वैल्यू किसकी है, आत्मा की है, लेकिन हम इस बात को जानते हुए भी मानते नहीं। अब यहाँ पर एक प्रश्न तो उठता ही है कि हम इसको क्यों नहीं मान रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, जानते हैं ना सब। इस पर अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो इसको बहुत बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको साबित करके बता सकती हूँ, एक एक पॉइंट को बता सकती हूँ कि क्यों इसको बहुत डिटेल में बता सकते हैं। लेकिन मैं चाह रही हूँ जल्द से जल्द श्रीमद् भगवद गीता स्टार्ट करें, क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। फिर हम इसको मान क्यों रहे, क्यों नहीं रहे, इसके लिए मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। उसमें क्या है कि एक ब्राह्मण था, वो अपने सर पर ऐसे ऊपर उठा के जाते ना एक बकरी को लेके जा रहा था। उसके ब्राह्मण के घर में गाय और बकरियां होती हैं और वो लेकर जा रहा था अपनी बकरी को। रास्ते में चार चोर थे और चारों चोरों ने सोचा कि देखो बकरी है, आज मिले अगर हाथ आ गई तो क्या करेंगे, इसको खाएंगे, क्योंकि चोर थे वो नॉन वेजिटेरियन भी खाते थे, तो बोला इसको काट के खाएंगे, लेकिन अगर हम लोग इस ब्राह्मण से ये बकरी ले लेंगे ना तो क्या होगा, ये शोर करेगा, पुलिस पुलिस पकड़ लेगी, डंडे लगेंगे, बकरी भी नहीं मिलेगी, कोई तरीका हम ऐसा निकालते हैं कि बकरी भी मिल जाए और पकड़े भी ना जाए। तो उन्होंने एक तरीका किया, वो दोनों चारों चोर जो थे वो अलग अलग जगहों पे खड़े हो गए, यानी थोड़े थोड़े फासले पर खड़े हो गए। पहला चोर आया ब्राह्मण देवता को, बोला ब्राह्मण देव आप ये कुत्ते को लेकर कहाँ जा रहे हो, ये कुत्ता जो आपने उठाया हुआ है मैंने तो समझा आप बहुत अच्छे वेद पाठी ब्राह्मण हो, ब्राह्मण लोग का कुत्ते में क्या काम, कुत्ते तो चंडाल उठाते हैं, आप तो, मैं तो सोच रहा था कि आपसे है ना अपने घर में कोई पूजा वूजा करवाऊंगा, लेकिन आप तो ऐसे खराब काम करते हो, कुत्तों को लेकर घूमते हो, तो मैं अभी नहीं करूंगा। तो ब्राह्मण इतना हैरान हो गया, बोला मैं बकरी को लेके जा रहा हूँ, ये इसको कुत्ता लग रहा है, तो ऐसे उसने बोला बकरी है ये कुत्ता थोड़ी है। तो ब्राह्मण ने उसने बोला अच्छा ब्राह्मण देवता मुझे आप पागल भी हो, मुझे पता नहीं था, सॉरी, बस ऐसे करके चला गया। ब्राह्मण को इतना आश्चर्य हुआ, बोले कितना पागल है, मैं बकरी को लेकर जा रहा हूँ और मुझे बोल रहा है कुत्ते को लेकर जा रहा हूँ, ऊपर से मुझे पागल भी बोल रहा है। फिर थोड़ा आगे गया ब्राह्मण और दूसरा वाला जो इसका चोर का दूसरा दोस्त भी खड़ा था ना, उसने बोला ब्राह्मण देवता मैं आपके ही घर पे आ रहा था, हमारे घर में यज्ञ करवाना है, अब मैं आपको लेने आ रहा था लेकिन अब नहीं लेके जा रहा हूँ। तो ब्राह्मण ने बोला क्यों, बोला फिर आप कुत्ते को लेकर जा रहे हो ना, अब कुत्ते वाले ब्राह्मण के साथ हम, मतलब आप कितने पवित्र ब्राह्मण नहीं हो, कुत्ते लेकर जाते हो, ये तो चंडाल लोग का काम है, तो मैं आपसे हम लोग यज्ञ नहीं कराएंगे। तो उसने बोला कुत्ता कहाँ है, ये तो बकरी है, ऐसे हाथ रख के देख रहा है, अभी उसको संशय हो रहा है कि दूसरा बंदा इसको कुत्ते बोला, तो जैसे बकरी के ऊपर हाथ रख के देख रहा था कान वान के है ये बकरी है या कुत्ता है, तो बस वो ऐसे उसको कह के चला गया साइड में, उससे बात भी नहीं किया गया। तो तीसरा अब थोड़ा आगे चला गया, ब्राह्मण को इतना संशय हो रहा था कि ये क्यों मुझे बार बार कुत्ता बोल रहे हैं, ये मैं तो बकरी लेकर जा रहा हूँ। तो फिर तीसरा दोस्त भी आ गया और उसको बोला ब्राह्मण देवता ये मैं ना हमारे घर में मेरे दादाजी जो है ना वो हमारे घर में पूजा करवाना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको लेने आ रही, लेकिन कुत्ता हो क्यों लेकर जा रहे हो आप, आपने कुत्ता उठाया हुआ है, तो फिर हमारे मेरे दादाजी ऐसे अपवित्र ब्राह्मण के साथ तो ये यज्ञ नहीं करवाएंगे, तो बस छोड़ दो। तो अब तो पता है उसने क्या किया, ब्राह्मण ने बकरी को उठा के फेंक ही दिया, बोला बकरी ये हो ही नहीं सकती, सब लोग को कुत्ता नजर आ रहा है, ऐसा नहीं कि वाकई में कुत्ता है, और उसने छोड़ दिया, नीचे उतार के लेके जा रहा था, बस अब लेके ही जा रहा था उतार के। तो चौथा आया बोला ये क्या ब्राह्मण देवता बकरी के, ये ब्राह्मण देवता ये कुत्ते के साथ साथ कहाँ जा रहे हो, देखो देखो सब लोग देखो, ऐसे चारों आ गए, बोला कुत्ते के साथ देखो ब्राह्मण जा रहा है। तो उसने कुत्ते को यानी कि बकरी को कुत्ता समझ के छोड़ दिया कि वाकई में ये वाकई में कुत्ता ही होगा, मुझे बकरी लग रहा है, लेकिन सबको जब कुत्ता लग रहा है तो ये कुत्ता ही होगा। समझ में आ रहा, यानी कि जब सब लोगों ने उसे ये बात बताई कि ये कुत्ता है कुत्ता है कुत्ता है, तो उसे ये बात समझ में आ गई कि ये कुत्ता है, भले मैं उसको बकरी मानूं लेकिन असल में ये कुत्ता ही होगा, क्योंकि सब लोग इसको कुत्ता मानते हैं। अब हम लोगों की क्या दशा है, जब से हम पैदा हुए हैं हमें सबने क्या कहा, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसका नाम ये है, यानी कि शरीर से ही हमें बताया कि आप ये हो, शरीर के हिसाब से ही हमें हमेशा बताया गया कि हमें ये शरीर हो, में आत्मा की कभी किसी ने बताया कि आप आत्मा हो, संसार में कभी किसी ने आपको ये बताया ही नहीं है कि आप आत्मा हो, ये तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अशोचानन वशोचस्वम प्रज्ञा वादांश वासते गदासु ना गतासुंश नानु शोचन्ति पंडिता, तुम तो ये शरीर हो ही नहीं, तुम तो आत्मा हो, ये तो कृष्ण के अतिरिक्त और कोई कहता ही नहीं है संसार में। आपकी माँ ने आपको शरीर कहा, आपके बाप ने आपको शरीर कहा, आपके दोस्तों ने आपको शरीर कहा, आपके प्रियजनों ने आपको शरीर कहा, आपके बच्चों ने आपको शरीर कहा, तो ऐसे सुनते 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 हमने क्या समझ लिया कि हम ये शरीर हैं, हम आत्मा नहीं हैं। अब वापस से हमें जब पता चला है, जब कृष्ण कहते हैं, शास्त्र कहता है कि ये शरीर आप नहीं हो, आप असल में आत्मा हो, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए वही विधि अपनानी है, बार 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 अपने आप को ये रियलाइज कराना है, श्रवण करना है। क्योंकि गुरु महाराज जो कथा हमें बताएंगे, जो श्रवण होगा, उसमें शास्त्र जब हम पढ़ेंगे, उसमें हमें बार 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 ये बात बताई जाएगी कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। कृष्ण कहेगा आप आत्मा हो, गुरु कहेंगे आप आत्मा हो, साधु कहेंगे आप आत्मा हो, शास्त्र कहेगा आत्मा हो। तो फिर इसे सुनते 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 हमारे मन में ये बात समझ में आ जाएगी कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो इस बात पे तो कोई किसी को डाउट नहीं है ना कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब जब हम ये बात मान लेते हैं कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, तो आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर हम ये आत्मा है, हम शरीर नहीं है, तो ये शरीर क्या है जो इतना बड़ा दिख रहा है, 4 फीट का, 5 फीट का, वो क्या है, या 6 फीट का? तो आइए अब हम इस बॉडी यानी इस शरीर के बारे में जानते हैं। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने शरीर के विषय में बहुत कुछ बताया, इसको प्रकृति कहा गया, शरीर के विषय में बहुत कुछ बताया है। जो अध्याय नंबर 13 हम पढ़ेंगे ना, उसमें इस प्रकृति के विषय में, इस शरीर के विषय में भगवान ने बहुत बहुत अच्छे तरीके से बताया है। इसको हम थोड़ा सा संक्षिप्त में देखेंगे यहाँ पर। तो अब इस शरीर में जो ये शरीर हमारा नजर आता है, इसमें टोटल 10 चीजें होती है। कितनी, कौन सी होती है? उसमें से 10 चीजों में से 5 सूक्ष्म है और 5 स्थूल है। सूक्ष्म का मतलब होता है जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, यानी कि जिनको हम देख नहीं सक रहे हैं, और स्थूल का मतलब है जिसको हम देख सकते हैं। मतलब दिस बॉडी जस्ट लाइक अ कंप्यूटर। जैसे एक कंप्यूटर में क्या होता है, कुछ हार्डवेयर होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर हमें नजर नहीं आते, हार्डवेयर जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड और ये सीपीयू, ये सब हमें नजर आते हैं ना। तो इसी शरीर में भी 5 सूक्ष्म होते हैं और 5 स्थूल होते हैं। अब जो सूक्ष्म होते हैं ना, जो नजर नहीं आते, उसके 2 पार्ट होते हैं। उसमें से टोटल 5 है ना, देखो सूक्ष्म, उनमें से 3 भौतिक है। भौतिक मतलब इस दुनिया के, आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल दुनिया के, ठीक है। अब टोटल कितनी चीजें हैं इस शरीर में, 10 हैं, उसमें से 5 सूक्ष्म हैं यानी सॉफ्टवेयर, नजर नहीं आती, 5 स्थूल हैं यानी हार्डवेयर हैं, नजर आती। और जो सॉफ्टवेयर हैं, उसमें उसके 2 पार्ट हैं, 3 भौतिक हैं यानी इस मादी दुनिया के हैं, और 2 आध्यात्मिक हैं यानी स्पिरिचुअल लोक के। यहाँ तक समझ में आ गया? अब सबसे पहले हम स्थूल वस्तु जो हार्डवेयर है ना, उनके बारे में, जो हम देख सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। वो कितने हैं? 5। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ठीक है। ये 5 जो हैं, वो हमें नजर आती हैं। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये स्थूल हैं। अब वो किस तरह से हमारे शरीर में, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले सारी मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। 5 स्थूल चीजें हो गई। अब 5 सूक्ष्म वस्तु हैं, जिनमें से 3 भौतिक है। भौतिक कौन कौन सी है? मन, बुद्धि, अहंकार। हमारे शरीर में एक मन होता है, जिसे हम हृदय भी बोलते हैं, मन होता है ना, जिसमें हम विचार करते हैं, बुद्धि जिससे हम फैसला लेते हैं, और एक अहंकार यानी जो ये कहता है कि मैं, जो बोलता है ना मैं हूँ, वो एक अहंकार, ठीक है। अब ये 3 कौन सी हो गई? भौतिक वस्तुएं यानी कि इस दुनिया की हो गई, और 2 आध्यात्मिक वस्तुएं होती हैं यानी आत्मा और परमात्मा। वो दोनों इस संसार की नहीं है, इस प्रकृति की नहीं है, इस जो भौतिक नेचर है ना, ये नेचर, मटेरियल नेचर, इसकी नहीं है, ये आध्यात्मिक है। कौन कौन सी? आत्मा और परमात्मा। अब ये 5 चीजें सूक्ष्म और 5 स्थूल समझ में आ गई। पृथ्वी यानी धरती, जल मतलब पानी, अग्नि मतलब आग, वायु मतलब हवा, और आकाश मतलब ईथर या स्पेस, ठीक है। ये 5 जो है वो स्थूल चीजें हैं, और 5 सूक्ष्म है। कौन कौन सी? मन, बुद्धि, अहंकार, ये भौतिक है, मेटेरियल नेचर की है, और 2 आध्यात्मिक है, आत्मा एंड परमात्मा यानी सोल एंड सुपर सोल, सही है। ये 10 चीजें हो गई। सबसे पहले 5 स्थूल वस्तुओं के बारे में जानेंगे। अब पहला है पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी हमारे शरीर में आपको नजर नहीं आ रही। पृथ्वी का क्या मतलब होता है? मट्टी ना, धरती, आपको नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही है पृथ्वी, लेकिन ये पृथ्वी, ये जो शरीर है वो पृथ्वी से बना है। प्रमाण, अब आप बोलोगे क्या जरूरत है। देखो जब हम जो अनाज खाते हैं ना वो कहाँ से आता है, पृथ्वी से आता है। जब हम खाना बंद कर देंगे ना तो ये शरीर धीरे धीरे सूख जाएगा। भगवान स्वयं श्रीमद भगवद गीता चैप्टर 3 टेक्स्ट नंबर 14। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि प्रमाण देना है ना आपको। मैंने आपको बोला था ना शब्द प्रमाण जरूरी है, और शब्द प्रमाण होता है जो शास्त्र में प्रमाण। अगर मैं आपको बोल दूं कि ये शरीर पृथ्वी से बना हुआ है तो मैं तो आपको ऐसे भी बता सकती हूँ, क्योंकि मेरी इंद्रियां भी तो पूर्ण नहीं है, मैं रॉन्ग भी बता सकती हूँ। लेकिन प्रमाण देना पड़ेगा, शास्त्र को प्रूफ करना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं 3.14 में क्या कहते हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। यानी इस संसार के अन्नात् भवन्ति भूतानि, यानी कि जितने भी भूत नजर आ रहे हैं, भूत कहते हैं जीव को, जितने इसको मुझे बहुत अच्छा लगता है भूत जब बोलते हैं ना। संसार में जितने भी जीव हैं उनको भूत इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो है ना भगवान की भक्ति नहीं करते ना, इसलिए भूत होते हैं। फिर जब भगवान की भक्ति करते फिर भक्त बन जाते हैं, ऐसा है। इसको मतलब बाद में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी है तो जितने भी संसार में जीव है उनका शरीर किससे बना है, अनाज से, और अनाज से शरीर बनाए इसलिए इसको बोलते हैं पृथ्वी का एक अंश हमारे शरीर में है। ठीक है, अगर अनाज नहीं खाते तो शरीर सूख जाता और पृथ्वी ना होती तो अनाज ना मिलता। अब दूसरा क्या है, स्थूल जल। हमारे शरीर में जल है, इसको कैसे साबित किया जाए, ब्लड सर्कुलेशन होता है ना हमारे शरीर में, ब्लड है, लिक्विड है हमारे शरीर से। देखो हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो क्या निकलता है, पसीना निकलता है, आंसू निकलते हैं, यूरिन पास होता है। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जल जो है हमारे, मुझे ये साबित करना है, ये इस बात का प्रूफ दे रही हूँ कि हमारे हमारे शरीर में ये सारी चीजें हैं। तो अब पसीना निकल रहा है इसका मतलब अंदर जल है तभी तो निकल रहा है ना, अगर नहीं होता तो आंसू कहाँ से निकलते। जल की एक मात्रा हमारे शरीर में है, मान गए। अभी है नंबर 3 है अग्नि। अग्नि कहाँ नजर आ रही है मेरे शरीर में, देखो नॉर्मल टेम्परेचर में हमारा शरीर गर्म रहता है, क्यों, क्योंकि अग्नि है। और हमारे शरीर में दिन रात जो हम लोग खाना खाते रहते हैं ना उसको पचाता कौन है, अग्नि। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 15 टेक्स्ट नंबर 14, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्त पचामन्न चतुर्विधम्। कि मैं आई एम द फायर टू डाइजेस्ट इन द बॉडीज ऑफ लिविंग एंटिटीज, यानी कि जितने भी जीव हैं उनके अंदर में अग्नि वैश्वानर अग्नि बन जाता हूँ और उनके जितने भी खाना वो खाते हैं उसको डाइजेस्ट करता हूँ। तो हमारे शरीर में अलग अलग टाइप की अग्नि होती है, जैसे बुखार होता है तो हमारा शरीर कितना तप जाता है, तो अग्नि तेज हो जाती है इसलिए हमें बुखार भी तेज हो जाता है और हमारा शरीर गर्म हो जाता है। उसके बाद है वायु। हमारे शरीर में 9 प्रकार के वायु होते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, जमाई लेते हैं। तो ये बताते जो योगा करते हैं वो बताते ना प्राण अपान वायान, ये सब 9 प्रकार की वायु हम हमारे शरीर में होती है। और आकाश, आकाश का मतलब होता है स्पेस। अब देखो स्पेस का क्या मतलब होता है, जब जहाँ पर स्पेस होगी ना तो वहां से शब्द निकलेंगे। अगर जहाँ पर जैसे सोलिड होगी ना कोई चीज जिसमें स्पेस नहीं होगी, मूवमेंट नहीं हो सकेगी, लेकिन जहाँ पर स्पेस होगी वहां पर खला होगा, वहां पर बात निकल सकेगी, शब्द निकल सकेंगे। ठीक है, तो ये 5 चीजें हमारे शरीर में कौन कौन सी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व स्थूल हैं, अर्थात हमारी आंखों से नजर आते हैं। इसमें 3 वस्तु है। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, सूक्ष्म, जो हमने सूक्ष्म बताया ना उसमें नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसमें से 3 वस्तु जो भौतिक हैं पहले उनके बारे में बात करते हैं। वो क्या थे, मन, बुद्धि और अहंकार। पहले हम मन पे बात करते हैं। सबसे पहले मन, अब देखो साइंटिस्ट या विज्ञानियों का सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि जितने भी डॉक्टर हैं वो कहते हैं हमारे शरीर के ब्रेन को मुख्य मानते हैं, यानी कि हमारे दिमाग को मुख्य मानते हैं, अधिक महत्वपूर्ण इसी को देते हैं। भगवद गीता में भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि ब्रेन से भी ज्यादा, दिमाग से भी ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण मन है, क्योंकि मन जिस चीज के, जिस भी इंद्रिय के साथ टच हो जाता है, जो हमने अभी, जो हमारी इंद्रिय होती है ना, आंख कान नाक और ये सब, इस जिसके साथ मन टच हो जाएगा ना, फिर वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। तो मन जो है वो इंद्रिय इतनी प्रबल है, इतना उसके अंदर इतना पावर है कि वो हमारी एक भी इंद्रिय, एक अगर हम देखो, जैसे मैं बताऊं आपको, अगर हम आंख से कोई चीज देख रहे होते हैं तो आंख हमारी इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय बोलते हैं इसको, उसको उसे देखेंगे तो जब तक देखते रहेंगे कोई भी परवाह नहीं होगी, उसको हासिल करने के लिए नहीं सोचेंगे। लेकिन जैसे ही मन आंख के साथ टच हो गया और उसको लगा कि ये चीज अच्छी है, फिर उसको पाने के लिए आप कुछ भी करोगे, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी उस टाइम पर, यानी कि मन जो है वो बुद्धि के ऊपर हावी हो जाएगा। मन के विषय में शास्त्र में आया है, मनैव मनुष्याणां कारण बंधन मोक्षयो बंधाय विषया संगे निर्मुक्तः विषया मना। यानी मनैव मनुष्याणां, मनुष्य मतलब मनुष्य यानी इंसान, मन ही इंसान के कारण बंधन मोक्ष है, बंधन और कारण का, बंधन और मोक्ष का कारण एकमात्र मन है। बांधाय विषया संगे, जब वो विषयों के साथ संग कर देता है, जब जीव जो है वो जिन जिन विषय, विषय किसको बोलते हैं, मतलब आंख का विषय है रूप, उसके साथ जिस जिसके साथ भी संग कर देता है, निर्मुक्तः विषया मना, और अगर वो किसी विषय के साथ संग नहीं करता है तो वो आजाद हो जाता है। यानी मन एक ऐसी वस्तु है, अगर इसमें बुरे विचार आ गए तो किसी व्यक्ति को नरक में पहुंचा सकता है, और अगर अच्छा विचार आ जाए, जैसे आपके मन में अभी अच्छा विचार आया है कि आप भगवद गीता को सीखना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, तो वही मन जो है आपको वैकुंठ में ले जा सकता है। इसलिए मन के बारे में समझना अति आवश्यक है। अब मैं आपको बताऊं मन का काम क्या है, वो काम क्या करता है। मन के तीन काम होते हैं, थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग। मन सोचता है, फील करता, अनुभव करता है और अच्छा कार्य और इच्छा करता है। फीलिंग और विलिंग, इच्छा करता है, दिन रात सोचता रहता है कि ये करना है वो करना है। नदी में जिस तरह पानी निरंतर बहता रहता है ना, उसी तरह मन में भी हर टाइम पर सोचें चलती रहती हैं, विचार होते रहते हैं, जन्म जन्मांतर से जो बुराइयां करते रहते आए ना, इसलिए मन में ज्यादातर बुरे ही विचार आते हैं। इसलिए मन को वश में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मन हमारे पास है, इसको वश में करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसको वश में करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। भगवान कहते हैं, मैंने अर्जुन कहते हैं, अर्जुन देखो कितने बलवान थे, लेकिन 6.34 में कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थी बलवत् दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। इतना चंचल है कृष्ण, ये मन इतना चंचल है, यदि स्थूल होता, नजर आ रहा होता, अब ये सूक्ष्म की बात कर रहे हैं हम, ये सूक्ष्म है, नजर भी नहीं आता, अगर स्थूल होता तो मैं इसको पकड़ लेता, ताले में बंद कर देता, और अपने गांडीव के जरिए मैं वायु को भी मैं वश में कर सकता हूँ, लेकिन मन को वश में करना मेरे बस की बात नहीं है। तो मन को कैसे वश में किया जाए? मन को वश में करने का एक तरीका शास्त्र बताता है। शास्त्र कहता है, मनत्रायते इति मंत्र। यदि मन को वश में करना हो तो उसका एक ही इलाज है, मंत्र जपो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र के साथ यदि हम मन को पकड़ेंगे तो मन वश में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा है बुद्धि, और बुद्धि, हम बुद्धि को तो सब जानते हैं, जिससे हम फैसला करते हैं, ठीक है। जिस तरह मन के काम कौन से होते हैं, थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग, तो बुद्धि का क्या काम होता है, डिसीजन लेना। अगर बुद्धि अच्छी होगी तो राइट डिसीजन लेंगे, अगर बुद्धि खराब होगी तो फिर रॉन्ग डिसीजन देंगे। वास्तव में जीवों के समस्त दुख इसीलिए हैं क्योंकि निर्णय ठीक, सही बुद्धि नहीं है, बुद्धि सही कार्य नहीं कर रही है, इसलिए वो सही निर्णय नहीं ले रहे हैं, सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं, इसलिए गलत डिसीजन हमेशा, गलत जो है डिसीजन हमेशा दुख का कारण बनते हैं। मैंने बताया ना आपको, ज्ञान, अज्ञानी मनुष्य दुखी होता है, तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया जाए? अब बुद्धि को अगर कंट्रोल करना है तो किसके द्वारा कैसे कर सकते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि बुद्धि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति। अगर आपको सही मायनों में अपनी बुद्धि से सही फैसला करवाना है तो एक काम करो, तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम, कंटिन्यूअस मेरे नाम का कीर्तन करो, तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी और तुम कभी भी गलत डिसीजन नहीं ले सकोगे। मन को कंट्रोल करना महामंत्र, बुद्धि को कंट्रोल करना महामंत्र। ये महामंत्र हर मर्ज की दवा है। उसके बाद आता है अहंकार। अहंकार का मतलब होता है फॉल्स ईगो, यानी अहंकार का सूक्ष्म तत्व हमारे शरीर में होता है। इस अहंकार का काम है हम अपनी पहचान बनाए रखना चाहते हैं। फॉल्स ईगो जो होता है, जैसे हम ये डॉक्टर हैं, हम वकील हैं, हम इंजीनियर हैं, हम खूबसूरत हैं, हम लड़की हैं, ये सब अहंकार है ना, मैं ये हूँ, तो ये मिथ्या अहंकार है। लेकिन ये अहंकार खत्म नहीं किया जा सकता, इसको शुद्ध किया जाता है। और शुद्ध अहंकार हमारा क्या है पता है? वो अहंकार जो वास्तव में हम हैं। अब देखो, ये तो मिथ्या अहंकार है ना, हम ये शरीर होता है ना, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, खूबसूरत, बदसूरत, ये सब तो शरीर की पहचान है। वास्तव में हम क्या हैं? यदि उसके ऊपर हम अहंकार करते हैं तो वो सही है अहंकार। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेन नित्यदास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। यानी चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते कि ये अहंकार के मैं ये हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये सब तो गलत अहंकार है। लेकिन हमारा असली अहंकार क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। अगर हम इस बात को मानते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। वास्तव में सबसे खूबसूरत अहंकार भी यही है कि जो त्रिलोकी का नाथ है ना, उसके दास हैं। जैसे कोई अगर बड़े किसी का नौकर होता है तो हम कैसे, किसी बड़ी फैक्ट्री में कोई काम करता है तो हम कैसे बोलते हैं, अच्छा इस फैक्ट्री में काम करता है या इस इंडस्ट्रीज में काम करता है तो बड़ी, तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम भगवान श्री कृष्ण जो त्रिलोकी के नाथ हैं उनकी फैक्ट्री के मुलाजिम हैं, वहां के सर्वेंट हैं। तो ये अहंकार एकदम खूबसूरत अहंकार है। उसके बाद है आत्मा। मैंने आपको बताया ना 10 चीजें, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इसको पढ़ लिया। अब दो भौतिक, दो है ना आध्यात्मिक तत्व जो मैंने बताए थे ना, दो स्पिरिचुअल अंग हैं हमारे शरीर में, आत्मा और परमात्मा। इसके बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। 32 मिनट्स हो गए तो इनको पहले आप समझ लो, और कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछो, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।